पेज नंबर 135 वाक्य विन्यास 55। अब तक वाक्य के एक अवयव पद और पदमात्र को लेकर अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव और विकास देखा गया। हमने देखा कि किस प्रकार हिंदी संज्ञाओं की कारक विभक्तियां और परसग सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण और संख्या वाचक विशेषण क्रिया के धातु और उनके प्रयोग तथा अव्यय अपभ्रंश से विकसित हुए हैं। लेकिन किसी भाषा में वाक्य के अवयवों का केवल रूपांतर और प्रयोग जानना ही काफी नहीं है, बल्कि उन अवयवों का पारस्परिक संबंध जानना भी आवश्यक है। वाक्य में शब्दों के पारस्परिक संबंध का अर्थ है एक दूसरे से उनका अन्वय, एक दूसरे पर उनका अधिकार और अंत में उनका क्रम। इन्हीं सब बातों के द्वारा किसी भाषा की वाक्य विन्यास संबंधी विशेषताओं का पता चलता है। नीचे हिंदी वाक्य विन्यास की उन थोड़ी सी विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है जिन्हें अपभ्रंश ने या तो अपनी अर्जित संपत्ति के रूप में हिंदी को दिया है अथवा संस्कृत की परंपरा को थोड़ा सा परिवर्तित करके आगे बढ़ाया है। 56। विभक्ति व्यत्यय कारक विभक्तियों का व्यत्यय संस्कृत से ही होता आ रहा। हेमचंद ने प्राकृत अपभ्रंश वाक्य रचना में इस व्यत्यय को लक्षित किया है। उनके अनुसार संबंध कारक की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर्म करण संप्रदान और अधिकरण के लिए भी होता है। इसके अतिरिक्त अधिकरण कारक की सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर्म और करण के लिए होता है। अपादान कारक की पंचमी विभक्ति का प्रयोग करण कारक के लिए तीन और कर्म कारक की द्वितीय विभक्ति का प्रयोग अधिकरण के लिए होता है। ये नियम हेमचंद ने प्राकृत वाक्य विन्यास के लिए बताए हैं। अपभ्रंश की चर्चा करते हुए उन्होंने इस विषय में अलग से और कुछ नहीं कहा है। फिर भी उनके दिए अपभ्रंश उदाहरणों में उपर्युक्त विभक्ति व्यत्यय तथा उसी तरह के कुछ और व्यत्यय पर्याप्त मिलते हैं। अपभ्रंश की इस प्रवृत्ति का विकास क्रमशः हिंदी में किस प्रकार हुआ, यह नीचे के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट हो सकता है। 1. चतुर्थ्या षष्ठी 3 131 क्विचिद द्वितीयादे 3 134 अत्र द्वितीया षष्ठी अत्र तृतीयायाः अत्र पंचम्याः अत्र सप्तम्याः प्राकृत व्याकरण 2 द्वितीया तृतीयों सप्तमी 3 पंचमयास्तृतीया च 4 सप्तम्या द्वितीया हिम शून्य प्राकृत व्याकरण 31 135,136,137 पेज नंबर 136 का संबंध कारक के विशिष्ट प्रयोग 1 कर्मकारक के अर्थ में तोवी महग्दम सुनाह अवराहियु न करंती हेम शून्य इक्वल्स शकुनियों को बेस विशिष्ठ वारियई कुमार शून्य प्रतिबोध इक्वल्स बेश विशिष्ट लोगों को तुआ हियठियह छद्दिवी सम शून्य रा शून्य 75 तुम हृदय स्थित को पिट आनी मज्झ संतोषही सम शून्य रास शून्य 197 इक्वल्स मुझको लोग कह पोचू सो न सोचू न संकोचू मेरे कवितावली इक्वल्स मुझे शरीर का तपाना व्यर्थ है इक्वल्स शरीर को 2 करण कारक के अर्थ में कंत जू सिंहो उवम्ययी हिम शून्य सिंह से सत्थावथ आलवनु साहुवी लो करेई हेम शून्य इक्वल्स स्वस्थावस्था वालों से क्या करना है प्रकाश का हमको साकेत इक्वल्स प्रकाश से आंख का अंधा विपत्ति का मारा दूध का जला 3 संप्रदान के अर्थ में फलायन हेम शून्य इक्वल्स शकुनियों के लिए दैवु घडावई वनी तरुहु सुनिहं जीवियु कासु तवल्लहु हेम शून्य इक्वल्स किसके लिए कितने पैसे तुम्हारे चाहिए सुनीता इक्वल्स तुम्हारे लिए ब्राह्मण का दिया व्यर्थ नहीं जाता इक्वल्स ब्राह्मण के लिए 4 अपादान के अर्थ में तेही निहरिया घर्ज कुमार शून्य प्रतिबोध इक्वल्स घर से कुछ का कुछ हो गया इक्वल्स कुछ से कुछ हो गया. बात का चुका आदमी, डाल का चुका बंदर. बात से, डाल से. पांच, अधिकरण के अर्थ में. पियु संगमी कऊ निदही पियहो परोखो कैओ हिम शून्य. प्रिय के परोक्ष होने पर कंजरू अन्यह तरुवरह कुड्डिंग घल्लई हथु हिम शून्य इक्वल्स अन्य तरुवरों पर. सिर लासियुम खंडसु हिम शून्य इक्वल्स कंधे पर. इन बातों का विचार मत कीजिए. बातों पर पेड़ का चढ़ना कठिन है इक्वल्स पेड़ पर. छह, संबंध स्वतंत्र कारक के अर्थ में. महु कंतहो गुठियहो कऊ झुंपड़ा वलंती हिम शून्य इक्वल्स मेरे कंत के घर रहते या रहने पर. पेज नंबर 137 तुआ हिटी पह विरह बिडम्बई का सम शून्य रास शून्य. छिहत्तर इक्वल्स तुम्हारे हृदय स्थित होने पर. ख, करण कारक के विशिष्ट प्रयोग अधिकरण कारक के अर्थ में. निदे गमिही रतरी हिम शून्य इक्वल्स निद्रा में. बरिस सैन वीजो मिलई हिम शून्य इक्वल्स वर्ष शत में. क्षणेन पहुंचई दुअडऊ पू शून्य ही शून्य. क्षण में मीरा मुझसु मेहर कर कबरीर इक्वल्स मुझ पर. फिर और काम से लगेगा सुनीता इक्वल्स काम में. ग, अधिकरण कारक के विशिष्ट प्रयोग करण के अर्थ में. तुह जली महु पुनु बलेई विहवी न पूर्य आस हिम शून्य इक्वल्स जल से वल्लभ से. आठ, पहर का दाझना मोप ए सया न जाय कबीर इक्वल्स मुझसे. मोप किमी कही आवे सूर शून्य इक्वल्स मुझसे. हिंदी में अधिकारण परसग पर या पे का प्रयोग संप्रदान और अपादान में भी होता है. जैसे अब का पर हम करब सिंगारा पद्मा शून्य इक्वल्स किसके लिए. का पर करो सिंगार पुरुष मोर आंधर इक्वल्स किसके लिए. जापे सुख चाहत लियो बिहारी इक्वल्स जिससे. इसी तरह अन्य कारकों में भी व्यत्यय होता रहता है. घ, संस्कृत में कई का कर्म सदैव द्वितीय विभक्ति में रहता है परंतु हिंदी में उसके साथ करण परसग से लगाया जाता है. जैसे मैंने उससे कहा. हिंदी में मैंने उसको कहा जैसा प्रयोग नहीं होता. हिंदी में यह विशेषता अपभ्रंश से आई है. जैसे मुनिवी नंदू वुतदु ये सेयदाल्स कहे कुमार शून्य प्रति शून्य. यहाँ सेयदाल्स में यद्यपि संबंध कारक की विभक्ति सस दिखाई पड़ती है परंतु है वह से का अर्थ देने वाली. पेज नंबर 138. सत्तावन, कर्मवाच्य के प्रयोग की विशेषता. हेमचंद्र ने विध्यर्थक ज प्रत्यय वाले रूपों के प्रयोग की व्याप्ति वर्तमान काल भविष्यत काल तथा आज्ञाथे बतलाने के बाद भावाच्य और कर्मवाच्य में भी उसके प्रयोग का विधान किया है. हिंदी कर्मवाच्य के अनेक रूपों में से एक ये भी है. इस कर्मवाच्य की अपभ्रंश से हिंदी तक के विकास की अवस्थाएं इस प्रकार हैं. हूँ बलि किज्जु हिम शून्य इक्वल्स मैं बलि की जाऊं. जाय जई तही देशडी हिम शून्य इक्वल्स उस देश में जाया जाए. जई आवई तो आनियई हिम शून्य इक्वल्स यदि आवे तो आना जाए. जई प्रिय उब्यारिज जई हिम शून्य इक्वल्स यदि प्रिय उबारा जाए. करुए मुखन को चहियत यही सजाए रहीम इक्वल्स चाही जाती है. मसक की पांसुरी पयोधी पाट्यतु है इक्वल्स पाटा जाता है. बोलत सुनियई टेर सूर शून्य इक्वल्स टेर सुनी जाती है. नैनन को तरसइये कहाँ लो दास इक्वल्स तरसाया जाए. ख, कर्मवाच्य का दूसरा रूप हिंदी में वह है जिसमें करण कारक के परसग ने युक्त कर्तता के साथ सकर्मक धातु का भूतकालिक कृदंत रूप आता है. जैसे मैंने कहा. ये प्रयोग भी अपभ्रंश से ही चला आ रहा है. एक, धोला मई तुहू वारिया हिम शून्य इक्वल्स मैंने वारिया वारा. वित्तीय मई भनिया तुहू हिम शून्य मैंने भनिया. जैन्हे रहूं वड्डिम भंजिय कीर्ति शून्य. जैन्ने जाचक जिन रंचिय कीर्ति शून्य बहुवचन कर्ता के साथ उन बानन अस को जो न मारा। जायसी 58 फ्रिया संबंधी कुछ अन्य विशिष्ट प्रयोग क्रियार्थक संज्ञा और जाय क्रिया के साथ अपभ्रंश में कभी कभी निषेधवाचक वाक्य बनाया जाता है जो भाववाच्य के अनुरूप होता है, जैसे 1 ईज इज्जो क्यस्य चिजी प्रभुतिना भावकर्म विधि वक्ष्याम येषा तु न वक्ष्यते तेषा संस्कृताति देशात् प्राप्स्य क्यस्य स्थाने इयर इज इत्येतावादेशो भवतः। हसियर हसिजर हसियंतो हसिज्जन्तो हसियमानो हसिज्मानो पैयई पैज्जई होयई बहुलाधिकारात् क्वचित् क्योपि विकल्पे भवति। मये न वैज मये न विजैज तेन लहेज तेन लहेजैज तेन अच्छिज तेन अच्छिजेज तेन इच्छियर प्राशून्य व्याशून्य 31160 पेज नंबर 139 पर भुंजन न जाए। हिम शून्य इक्वल्स भोगा नहीं जाता। हियो न धरनौ जाए सम शून्य रास शून्य पर मही कहन न जाए सम शून्य रास शून्य। इसके समान हिंदी में हमसे न कहा जाए हमसे न भरा जाए जैसे प्रयोग मिलते हैं। पुराने साहित्य में भी और गनी नहीं जात सूर तो काहू पै मटी न जाती अजनी सुदामा चरित। 59 संयुक्त क्रिया अपभ्रंश से हिंदी की संयुक्त क्रियाओं का जो विकास हुआ है वह भी रूप और अर्थ की दृष्टि से वाक्य विन्यास की महत्वपूर्ण विशेषता है। संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग भारतीय आर्य भाषा के इतिहास में सबसे पहले अपभ्रंश में ही दिखाई पड़ता है, लेकिन रूप और अर्थ दोनों ही दृष्टियों से अपभ्रंश की संयुक्त क्रियाएं अत्यंत सरल और आरंभिक अवस्था में हैं। उनकी अपेक्षा आधुनिक हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का गठन बहुत पेचीदा हो गया है। अपभ्रंश और हिंदी की संयुक्त क्रियाओं का कुछ तुलनात्मक परिचय क्रिया के प्रसंग में दिया जा चुका है, अतः पुनरावृत्ति अनावश्यक है। 60 वाक्य गठन संबंधी अन्य विचार अपभ्रंश में प्रायः छोटे छोटे साधारण वाक्य ही मिलते हैं। एक से अधिक अथवा उपवाक्यों वाले मिश्रित और संश्लिष्ट वाक्य कम मिलते हैं। मिश्रित वाक्य प्रायः वहीं आते हैं जहां एक वाक्य शर्त वाला होता है, जैसे जई आवई तो आनियई हिम शून्य जई ससनेही तो मूय हिम शून्य जई पुच्छई घर बड्डाई तो बड्डा घर ओई हिम शून्य जई केवी पावीजु पियु अकिया कुट करीजु हिम शून्य। परवर्ती अपभ्रंश में एक से अधिक विशेषण उपवाक्यों को जोड़ने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम जो तथा उसके अन्य रूपों से मदद लेने की अपेक्षा एनाफोरिक ढंग से स्वतंत्र वाक्यों में रखने की ओर प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, जैसे नव घन हेल विनगय निम्मल करु सर्यर्यनी पच्चक्खु अमैभरु झरंतु फुरई तेह चंद जिन्नथु पिये संजनी सुहु मुहु विरह गिधुमि कैयलगी झंपियउ। सम शून्य रास शून्य 122 नवघ रेखा विनिर्गत निर्मल कर शर्द्रजन्या प्रत्यक्ष मृतभर क्षरण स्फुरित तस्य चंद्रस्य जयनार्थ प्रियस्य संजनित सुख मुख विरहाग्निधुमैन कन दिनमारंभ्य झंपितम। कोष्टक 1 संदेश रास्क स्टडी 76 वर्ण रत्नाकर अंग्रेजी भूमिका 38 पेज नंबर 140 विद्युलता का तरंग ते पथ दिशा ज्ञान होयते अच वर्ण शून्य 31 का मदे जो उन्मत हाथी तन्ही के जे दांते आघातल सरल वृक्षता सयोच्युत भेल जे निर्यास्तकर परिमल से कैसन अखलू जनी बन देवता आयतन धूप देल अच वर्ण शून्य 50 का पदाती का धर्म इन्हीं बाट कादव भई गऊ वर्ण 49 का किसी भाषा की आरंभिक अवस्था में ऐसी सरल वाक्य योजना का मिलना स्वाभाविक है, लेकिन आगे चलकर खड़ी बोली में जब गद्य साहित्य का काफी विकास हुआ तो अनेक प्रकार के मिश्रित वाक्यों की योजना हुई। अपभ्रंश वाक्य गठन की उक्त विधि हिंदी की मिश्रित और संयुक्त वाक्य रचना की ओर आरंभिक प्रयत्न है।